ओम शांति। अव्यक्त मुरली 23/9/2018 प्रश्न नंबर 3 जो कि 24/2/84 की मुरली से लिया हुआ है। प्रश्न है, आजकल किसी किसी स्थान पर चोरी और भय का वातावरण बहुत है, उससे कैसे बचे। प्रश्न है, आजकल किसी किसी स्थान पर चोरी और भय का वातावरण बहुत है, उससे कैसे बचे। उत्तर बाबा ने दिया है, इसमें योग की शक्ति बहुत चाहिए। मान लो कोई आपको डराने के ख्याल से आता है तो उस समय योग की शक्ति दो। अगर थोड़ा कुछ बोलेंगे तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए ऐसे समय पर शांति की शक्ति दो। उस समय पर अगर थोड़े भी कुछ कहा तो उन्होंने जैसे अग्नि में तेल डाला। आप ऐसे रीति से रहो जैसे बेपरवाह है। हमको कोई परवाह नहीं, जो करता है उसको साक्षी होकर अंदर शांति की शक्ति दो। किसको? चोर को। तो फिर उसके हाथ नहीं चलेंगे, वह समझेंगे इनको तो कोई परवाह नहीं है। नहीं तो डराते हैं, डर गए या हलचल में आए तो वह और ही हलचल में लाते। भय भी उन्हों को हिम्मत दिलाता है, इसलिए भय में नहीं आना चाहिए। ऐसे टाइम पर साक्षी दृष्टा की स्थिति यूज करनी है, अभ्यास चाहिए ऐसे टाइम। तो बाबा ने प्रश्न पूछा है, आजकल किसी किसी स्थान पर चोरी और किसका वातावरण है? भय का। तो उससे कैसे बचे। तो 5 उत्तर दिए। यदि चोरी होती है या चोर आता है या भय का वायुमंडल है तो उससे कैसे बचे। सबसे पहला, योग की शक्ति, पावर ऑफ योगा, योग की शक्ति। दूसरा, शांति की शक्ति, पावर ऑफ साइलेंस, पावर ऑफ साइलेंस। तीसरा, बेपरवाह बनो, केयरफ्री एम्परर। चौथा, फियरलेस, निर्भय। और 5वां, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी। तो यदि चोर आता है या भय का वायुमंडल है तो इन 5 चीजों को धारण करो। चोर कहां पर आता है? चाहे घर या सेवा केंद्र, क्योंकि इसके पहले का जो प्रश्न था वो सेवा केंद्र के संबंधित है। यदि भटकती हुई आत्मा का प्रवेश सेवा केंद्र पर आने वाले किसी आत्मा में होता है तो क्या किया जाए। उसके आगे का ये तीसरा प्रश्न है कि यदि भय है, यदि चोरी का चोरी का भय है तो क्या किया जाए। तो सबसे पहली चीज जो बताई है वो है योग बल। दूसरा, उसको क्या करो? शांति का दान दो, शांति की शक्ति का दान। तीसरा, बेपरवाह बन जाओ। उसको लगे कि ये बेपरवाह है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, निर्भय है, भयभीत नहीं हो जाना है चोर आ जाए तो। और साक्षी दृष्टा। तो ये 4-5 चीजों का आधार लेना है। यदि ऐसी परिस्थिति आती है कि चोरों से सामना हो जाए, अचानक चूरे चाकू बंदूक लेकर चोर सामने आ जाए, या कोई भयभीत करने आ जाए तो इन पांच चीजों का आधार लेना। उसके भी पहले चोर आए ही ना, इसके लिए क्या करें? नहीं, सेफ्टी के क्या साधन है? स्थूल बाउंड्री। हम बात करेंगे सेवा केंद्र की। एक सेवा केंद्र है बाबा का, या कोई घर है जिसमें बाबा के बच्चे हैं, तो यहां पर चोरी ना हो उसके लिए क्या किया जाए? स्थूल कुत्ता, उस कुत्ते में मोह हो जाएगा। सीसीटीवी कैमरा दो। तीसरा, ऐसी कोई चीज नहीं रखो कि लोगों का आकर्षण हो, और अलार्म, सेफ्टी अलार्म होते हैं, सेफ्टी अलार्म, और सिक्योरिटी व्यवस्था हो, और ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बाहर बजने चाहिए तो उनको लगे इनके पास ट्रैफिक साउंड सिस्टम है, और सेफ्टी के क्या साधन है? घर की सेफ्टी के लॉक, डबल लॉक, डबल लॉक होते हैं ना, अंदर से बाहर से, और बाउंड्री पर लाइट, और लकड़ी डंडा तैयार रखना चाहिए, और सेवा केंद्र पर चोरी ना हो।
अकेले नहीं रहना चाहिए, लोगों को ऐसा नहीं लगे कि भिंज
अकेले। हाँ, अकेले नहीं रहना चाहिए, उनको लगा कि लगे कि यहाँ आना जाना चालू ही रहता है। और
लाइट हो,
लाइट करते हैं, लाइट हो बाहर, बाहर वरांडे में रात में, और वहाँ के पड़ोसियों के साथ थोड़े अच्छे संबंध होने चाहिए, और पुलिस के साथ कांटेक्ट होना चाहिए, और सेवा केंद्र चोरी ना हो, क्या किया जाए? लॉक सिस्टम अंदर वाली जो है वो भी जरा अच्छी होनी चाहिए, कि यूजुअली क्या चोरी होता है? भंडारी, भंडारी लेके जाते हैं ना, और अपरिचित व्यक्तियों को सीधा प्रवेश ना दिया जाए, या अपरिचित व्यक्तियों को सीधा अंदर प्रवेश देना, या फिर उनके बहकावे में आ जाना, जैसे कुछ खरीदने आएंगे, बेचने आते हैं और बेहोश कर देते हैं अगरबत्ती जलाकर या और कुछ कर, तो अपरिचित व्यक्तियों के लिए टाइम फिक्स होना चाहिए। और कोई इस तरह के जो लोग आते हैं सिलेंडर का पाइप चेंज करने, इलेक्ट्रिसिटी चेंज करने, या कोई प्लम्बर आता है और क्योंकि किसकी कब कुदृष्टि हो जाए बता नहीं सकते। आज की मुरली में है जो यहां है वो भी विष से पूरे निकले नहीं है, पीछे पड़ जाते हैं, काम के गड्ढे में गिर जाते हैं जो यहां है। फिर तो हम बात कर रहे हैं उनकी जो बाहर से आ रहे हैं, और क्या किया जाए जिससे सेंटर पर चोरी ना हो? स्थूल बातें, बिजली का करंट लगा के रखो। तो ये सारी ढेर सारी बातें हैं जो करते भी है, परंतु और ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्यों चोरी ना हो आज की मुरली से? क्योंकि ये मेरा सेंटर नहीं है। मेरा सेंटर कहा और ये गिरा, मरा। मेरा समझना ही नहीं है, सब कुछ शिव बाबा का है। मेरा कहां से आया? तुम्हें संभालने के लिए दिया गया है, तुम सर्विस पर हो, तो सेंटर की सबसे पहले तो स्थूल रीति से सिक्योरिटी, सुरक्षा हो। ये हो गया स्थूल, कि जिससे चोरी ना हो। फिर है दूसरा प्रश्न, सूक्ष्म, क्या किया जाए जिससे चोरी ना हो? एक है स्थूल, फिर है सूक्ष्म। सूक्ष्म क्या करें? योग का पावरफुल शक्तिशाली वातावरण हो, योग का शक्तिशाली वातावरण हो, पावरफुल योग तपस्या हो, जिस सेवा केंद्र पर शक्तिशाली योग है वहां पर सभी विघ्न स्वतः समाप्त हो जाते हैं। मेरे साथ योग रखेंगे तो चढ़ती कला होगी, मेरे साथ योग नहीं रखेंगे तो गिरती कला होगी। आज की मुरली में एक वाक्य है, मेरे साथ योग रखेंगे तो चढ़ती कला, मेरे साथ योग नहीं रखेंगे तो गिरती कला। तो योग का वायुमंडल शक्तिशाली बनाना है, योग पावरफुल बनाना है, सेवा केंद्र को योग आश्रम बनाना है, सेवा केंद्र को योग भवन बनाना है, सेवा केंद्र को योग की गुफा बनाना है, सेवा केंद्र को योग का महल बनाना है, सेवा केंद्र को योग का कुंड बनाना है, सेवा केंद्र को योग का किला दुर्ग बनाना है, सेवा केंद्र को योग का मंदिर बनाना है, सेवा केंद्र को योग का तीर्थ स्थान बनाना है, सेवा केंद्र को योग का केंद्र बनाना है। तो ये इतने टॉपिक्स है, एक एक को अभी टॉपिक दे रहे हैं। श्याम भाई योग आश्रम, सुशील भाई कभी भी बोला जाएगा, अपना अपना टॉपिक, यहाँ अपना अपना टॉपिक ले लो। योग आश्रम, योग आश्रम, सुशील भाई योग भवन, देवेंद्र भाई योग महल, प्रकाश भाई योग कुंड, उसके बाद में प्रभाकर भाई योग किला। टॉपिक है सेवा केंद्र को ये सब कैसे बनाए, सेवा केंद्र को योग आश्रम कैसे बनाए, सेवा केंद्र को योग भवन कैसे बनाए। आशीष भाई योग कौन सा बचा है, महल, योग केंद्र, योग नहीं नहीं होमवर्क नहीं दिया है, योग केंद्र है, योग केंद्र कैसे बनाए। फिर उसके बाद में सेवा केंद्र को योग प्रयोगशाला, अरविंद भाई कैसे बनाए। उसके बाद में कमलेश भाई सेवा केंद्र को योग तीर्थ, योग तीर्थ स्थान, योग का तीर्थ कैसे बनाए। उसके बाद में आनंद भाई सेवा केंद्र को योग का दीप स्तंभ कैसे बनाए, योग का दीप स्तंभ। हेमलता बहन सेवा केंद्र को योग का जो इसमें आया है औषधालय योग की हट्टी कैसे बनाए, सेवा केंद्र को योग की हट्टी कैसे बनाए। हट्टी अर्थात दुकान। उसके बाद में विट्ठल भाई सेवा केंद्र को योग की गुफा किसी को दिया है, योग की गुफा कैसे बनाए। तो योग की गुफा अर्थात पहले तो आप गुफा में जाना पड़ेगा, परीक्षण करना पड़ेगा गुफा में क्या क्या चीजें होती है, गुफा में क्या क्या होता, क्या क्या है, द्वार कैसा होता है, दीवारें कैसी होती है, वहां अंधकार होता है, यहां क्या होता है। ये योग का गुफा अर्थात और स्थूल गुफा में क्या अंतर है, वहां कौन बैठते हैं, वहां हठ योगी या राजयोगी, वहां अंधकार यहां प्रकाश, वहां कौन सा द्वार यहां कौन सा द्वार, गुफा में क्या फायदे हैं और इधर गुफा के क्या फायदे हैं। तो ये सारे योग के टॉपिक्स है। 2007 जनवरी मास जो था उसमें पूरे मास में जो भी वरदान थे वो योग के प्रयोग के ऊपर वरदान थे सारे। 2007 जनवरी मास साकार मुरलिया, एक मास सारे वरदान योग के प्रयोग के ऊपर थे। जिसको ढूंढना है वो ढूंढे। 2007 जनवरी मास योग के प्रयोग पर ही सारे वरदान थे। तो हमारा प्रश्न है, प्रश्न तो बाबा ने पूछा है कि चोरी ना हो, चोरी अगर हो जाए तो क्या करो, या फिर डर का वायुमंडल हो तो क्या करो। तो हमने सबसे पहला प्रश्न उठाया कि पहले तो चोरी ना हो उसके लिए क्या किया जाए, तो पहली बात थी स्थूल बातें, सिक्योरिटी वाली, सीसीटीवी और वो सारी, और दूसरी अब बातें हैं सूक्ष्म, तो क्या किया जाए, सबसे पहला तो योग शक्तिशाली हो, सेवा केंद्र की आत्मा योगी हो, तपस्वी हो, और बाबा को अपना पहरेदार बना देना, बाबा को वॉचमैन पहना देना, बाबा को अंगरक्षक बना देना, बॉडीगार्ड बना देना, योग का पहरा हो, भगवान स्वयं पहरेदार हो, और क्या करेंगे, सूक्ष्म योग, सूक्ष्म सुरक्षा कैसे करेंगे, चोर चुप और इस तरह के जो लोग हैं, मैं यज्ञ रक्षक आत्मा हूं, इस तरह से पावरफुल सोमान का अभ्यास किया जाए, और 24 घंटे योग भट्टी चलती रहे, और योग क्या है, योग की कवच हो, और याद और सेवा का डबल लॉक हो, और क्या हो, सूक्ष्म में वो चोर वहां से भूल जाए तो उसका लक्ष्य भूल जाए, अपना भी सामान देके चला जाए। और एक जैन फकीर था, तो बेचारा रात में बैठा हुआ था, कुछ कर रहा होगा ध्यान योग, तो एक बार एक चोर ने प्रवेश किया उसकी झोपड़ी में, और चोर भी थोड़ा बिदक गया ये देखकर कि उसने तो सोचा था अंदर का व्यक्ति सोया होगा, पर देखा कि ये तो साधु है और वो जाग रहा है, तो एकदम थोड़ा डरता है। तो वो फकीर कहता है, कैसे आने हुआ, आना हुआ, आओ, डरने की कोई बात नहीं है, आ जाओ आ जाओ। तो वो चोर कहता है, मैं चोर हूं, चोरी करने आया हूं। तो फकीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो कहता है कि सारे गांव को छोड़कर तुमको ये झोपड़ी ही मिली, और मैं भी कैसा व्यक्ति हूं कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, हाँ पर तुम इतना एक काम करो, थोड़े पैसे पड़े हुए वो पैसे तुम ले लो। तो वो चोर जाता है, पैसे लेता है सारे, और जाने को रहता है, तो कहता है, हाँ पर मेरे लिए एक रुपया छोड़ के जाना, मेरे कल सुबह थोड़ा काम आएगा। तो उसको थोड़ा आश्चर्य होता है ये कैसा व्यक्ति है। और फिर जाते जाते फकीर कहता है कि जाते जाते मुझे धन्यवाद तो करके जाओ। चोर कहता है, हाँ धन्यवाद, और चला जाता है। एक आध साल के बाद चोर पकड़ा जाता है, और चोर जब पकड़ा जाता है तो गवाह इकट्ठे किए जाते हैं, और ये जो चोरी थी फकीर के घर की, क्योंकि वो फकीर थोड़ा प्रसिद्ध था, तो फकीर को भी बुलाया जाता है, और उसके बोल को जरा महत्व होता है। अगर ये फकीर कह दे कि ये चोर है, तो ये चोर को तो सीधा जेल हो जाएगी। तो फकीर को बुलाया जाता है, मैजिस्ट्रेट पूछता है, क्या इसने तुम्हारे घर चोरी की थी? वो कहते हैं, चोरी चोरी तो नहीं की थी, ये तो, क्या इसे जानते हो, ये तो मेरा मित्र है, चोरी तो नहीं की थी, पर हाँ एक बार ये मेरे घर आया था जरूर रात को, और मैंने उसे कुछ पैसे दिए थे, और जाते समय इसने धन्यवाद कह के गया था, ये पूछो उसको किया था कि नहीं। तो वो कहता है, हाँ मैंने धन्यवाद तो किया था। तो मैजिस्ट्रेट कहता है, इसको तो छोड़ देना चाहिए। तो उस चोर को छोड़ दिया जाता है। ये सारी चीजें देखकर वो जो चोर होता है उसमें आंतरिक परिवर्तन आ जाता है। वो कहते हैं, कैसा आदमी है ये, मैं पहले तो इसके घर चोरी करने गया, ये तो डरा नहीं, दूसरा पैसे लिए तो उसने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं, जो लेना है ले जा, और उसको दुख हुआ कि मैं तुझे कुछ दे नहीं सका, और जाते समय कह के गया कि धन्यवाद देकर जाओ, और अभी भी कहता है कि ये मेरा मित्र है। तो वहां उस चोर के हृदय में परिवर्तन आ जाता है, और वो हमेशा के लिए उससे मुक्त हो जाता है, चोरी से। ऐसा परिवर्तन एक चोर में। साधु संत योगी महात्मा इस ढंग से सिखाते हैं। डिडैक्टिक लेक्चर्स नहीं होते उनके। डिडैक्टिक अर्थात सर्विंग टू टीच, ए इधर आओ, ये नहीं करना वो नहीं करो, ये करना वो नहीं करना, डोंट्स एंड डूज एंड डोंट्स, ये भाषा नहीं होती है। उदाहरण से सिखाते हैं स्वयं के, और उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो सूक्ष्म में और क्या करेंगे जिससे चोरी ना हो? पहले तो ये समझो कि ये किसका सेवा केंद्र है, ये मेरा नहीं है, शिव बाबा का है, मुझे संभालने के लिए दिया गया है। हम दिन रात सेवा में है, दिन रात सेवा तो करनी पड़ेगी। आज बाबा ने एक उदाहरण दिया है बैल का, मैं इसमें निरंतर सवार नहीं रहता हूं। बैल जब लंबा समय खड़ा रहता है या थक जाता है तो क्या होता है, उसको आंसू आते हैं। यहां आंसू आने की बात नहीं है, यह तो निरंतर सेवा में है, ब्रह्मा के लिए कहा है, ब्रह्मा निरंतर सेवा में है, इसके लिए थकने की बात नहीं है। उसी तरह एक एक सेवा केंद्र पर एक एक बहन एक एक भाई जो है वो निरंतर सेवा में है। ऐसा कोई समय नहीं है कि कोई कहे कि मैं सेवा में नहीं हूं, छुट्टी है। यज्ञ में एक समय ऐसा था कि सब लोग बहुत ज्यादा स्थूल सेवाएं करते थे, गेहूं आता था, गेहूं की बोरियां भरते थे, गेहूं को निकालते थे, फिर धोते थे और शांति स्तंभ पर सुखाई जाती थी, और फिर अगर आधी रात में बारिश आ रही होती तो बेल बजती थी और एक बजे और दो बजे सबके सब वापिस आ जाते थे वो सब ये करने के लिए, और दादी सामने स्वयं खड़ी रहती थी, ऐसा कहते हैं सब, दीदी दादी दोनों। तो स्थूल सेवाएं, स्थूल सेवाएं कर्मेंद्रियों को शीतल कर देगी, कर्मणा सेवा कर्मेंद्रियों को शिथिल कर देगी, नहीं तो कर्मेंद्रियों में जो उत्तेजना है वो कैसे शिथिल होगी। तन को लगा दो सेवा में, आज भी कहा है बाबा ने, तन सेवा में लगा दो, ये तन में जो आवेश है, उद्वेग है, ये तन में जो पैशन है, एक्साइटमेंट है, इंद्रियों की कशिश है, आकर्षण है, वो सब कुछ धीरे धीरे शांत होगा स्थूल सेवा में लगाने से। तो सेवा में लगा देना स्वयं को, हर प्रकार की सेवा, छोटी से छोटी, कोई छोटी सेवा होती नहीं है वैसे तो, यज्ञ की हर सेवा बड़ी सेवा है। तो ये हो गया। तो अभी आते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न पूछा है बाबा ने कि आजकल किसी किसी स्थान पर चोरी और भय का वातावरण बहुत है, उससे कैसे बचे? तो उत्तर पांच दिए हुए हैं। पहला उत्तर है योग बल, योग की शक्ति, योग को बढ़ाना है, योग का वायुमंडल और बढ़ाना है, निरंतर बुद्धि की तार उससे लगी रहे। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात कही थी, जैसे कर्मेंद्रियों की तार बुद्धि से जुड़ी हुई है, जैसे कर्मेंद्रियों की तार बुद्धि से जुड़ी हुई है, तुम बच्चों की तार मुझसे जुड़ी हुई है। तुम क्या क्या करते हो मैं जानता हूं, मुझसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, इसके लिए छिपाओ नहीं बाप से। आज भी बोला है यदि कोई भूल हो जाए कम से कम आके इतना तो कहो, आई एम सॉरी, माफी तो मांगो, भूल इतनी बड़ी और माफी भी नहीं मांगते, क्षमा करो क्षमा करो, भक्ति मार्ग में तो बहुत चिल्लाते थे क्षमा क्षमा क्षमा, भूले बहुत करते, बाप आए हैं तुम्हें भूल बनाने। तो योग की शक्ति को बढ़ाना है, योग का चार्ट बढ़ाना है, तपस्या को बढ़ाना है, योग का बल बढ़ाना है, तपोबल बढ़ाना है। ऐसा नहीं खाली जब बैठे हैं तब योग है, निरंतर योगी, सतत योगी, तार निरंतर जुड़ी हुई हो उसके साथ, ऐसा योग। जब तुम बाबा के कमरे में आते हो, तुम बाबा के कमरे में आते, बाप तुम्हारे दिल के कमरे में आकर तुमसे बात करते हैं। संडे की मुरली, तीनों ही उदाहरण दिए हैं। शांति स्तंभ तुम हो, तुम शांति स्तंभ के आगे खड़े रहते हो, बाप तुम्हारे आगे खड़ा रहता है। तुम बाबा के कमरे में जाते हो, बाप तुम्हारे दिल के कमरे में आते हैं। तुम झोपड़ी में जाते हो, वो स्थान है, वो यादगार है दिलबर और दिलरुबा का, और वहां पर बाबा को ताल साज सुनाई देते हैं, खुशी के, अतीन्द्रिय सुख के, आनंद के तुम्हारे, तो योग शक्तिशाली हो, पावरफुल हो। योग हम क्यों करें? योग केवल हमको अपने लिए नहीं करना है, योग के दूसरे बहुत सारे कारण है। योग से खाली अपने संस्कार, कड़े संस्कार और विकर्म दग्ध करने के लिए नहीं है, या अतीन्द्रिय सुख के लिए नहीं है। योग किस लिए है? विश्व के दुखों को दूर करने के लिए। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है, जब तुम बिंदु रूप स्थिति में स्थित होते हो तो इविल सोल्स, तो भटकती हुई आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हो, भटकती हुई आत्माओं की मदद करते हो। जब तुम बिंदु रूप स्थिति में स्थित होते हो, योग प्रकृति के लिए है, प्रकृति को पावन करते हैं हम अपने योग से, हम अपने योग से यज्ञ को निर्विघ्न बनाते हैं। एक एक ब्राह्मण निर्विघ्न, एक एक सेवाधारी निर्विघ्न, सेंटर निर्विघ्न, सेंटर इंचार्ज निर्विघ्न, जोन निर्विघ्न, जोनल इंचार्ज निर्विघ्न, मधुबन निर्विघ्न, यज्ञ निर्विघ्न, ब्राह्मण परिवार निर्विघ्न, विश्व निर्विघ्न, यह तुम्हें करना है। यह संपूर्ण यज्ञ निर्विघ्न हो जाए, और यह होगा तब जब मैं स्वयं निर्विघ्न होऊंगा तब। तो योग को शक्तिशाली बनाना है, योग का चार्ट बढ़ाना है, योग और योग में रुकना नहीं है, अशरीरी अवस्था योग में वैरायटी प्रयोग करने और योग के प्रयोग करना है। जीवन योग की प्रयोगशाला बन जाए, लेबोरेटरी बन जाए, जिसमें हम प्रतिदिन बैठकर क्या कर रहे हैं, योग के प्रयोग कर रहे हैं। जैसे वो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते रहता है, ये केमिकल उसमें डालता है क्या हुआ, वो केमिकल उसमें डालता है क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट करके देखते रहता है क्या होता है, संशोधन अनुसंधान। वैसे जीवन एक अनुसंधान केंद्र बन जाए, तो सबसे पहला योग बल। दूसरा बताया, दूसरा क्या बताया, शांति की शक्ति। अगर थोड़ा कुछ बोलेंगे तो नुकसान हो जाएगा, चोर आया है घर के सामने, घर में, तो क्या उसको समझाने लगेंगे, थोड़ा कुछ बोलेंगे तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए ऐसे समय पर शांति की शक्ति दो। उस समय पर अगर थोड़ा भी कुछ कहा तो उसमें जैसे अग्नि में तेल डालना है, तो क्या करना है, शांति का दान देना है। सुबह की मुरली में बाबा ने कहा है, मेरा धर्म भी, मेरा स्वधर्म भी शांति है, तुम्हारा स्वधर्म भी शांति है, मैं भी शांति देश से आया हूं, शांति के, शांत के देश से आया हूं, तुम भी शांत के देश से आए हो। हम वो शांति खाली वो नहीं है, लड़ना झगड़ना नहीं, पति स्त्री पुरुष लड़ते झगड़ते हैं इसके लिए शांति नहीं, ये नहीं, आत्मा का तो स्वधर्म ही शांति है। तो शांति का बल, शांति की शक्ति, साइलेंस का बल, साइलेंस की पावर स्वयं में भरनी है और उस आत्मा को भी देनी है। किस आत्मा को? चोर। वो जो कहानी सुनाई थी, वो जो कहानी सुनाई थी, उसमें उस फकीर को वो चोर पूछता है कि क्या तुम मुझे चोर नहीं समझते? वो फकीर कहता है, जब मैंने अपने अंदर के सभी चोरों को मिटा दिया, अब मेरे लिए बाहर का कोई भी चोर नहीं है, मेरे अंदर जो विकारों के चोर थे वो समाप्त हो गए, इसके लिए मैं किसी को भी चोर नहीं समझता, सब मेरे हैं, सब मेरे अपने हैं। तो शांति की शक्ति का दान देना है, हलचल में नहीं आना है, चोर चोर चोर,
कोई चोर समझना है, नहीं एक चोर, एक विश्व मानना है।
और वैसे देखा जाए तो इस संपूर्ण सृष्टि में हर एक चोर है, चाहे एक कोई छोटे चोर है, कोई बड़ा चोर है, कोई दो पैसे की चोरी करता है, कोई बड़े पैसों की चोरी करता है, बाकी है सभी चोर। एक चोर सिकंदर जब था, तब एक चोर उसके खेमे में आता है और चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, सिकंदर महान, सिकंदर के सामने लाया जाता है, सिकंदर कहता है बताओ तुम्हारे साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए, जैसे उसने पोरस से कहा था कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, पोरस कहता है जैसा एक राजा दूसरे राज्य के साथ, ये चोर कहता है जैसा कोई बड़ा भाई छोटे भाई के साथ, वो सिकंदर कहता है हम सिकंदर महान और तुम हमारे भाई कहां से हुए, उसने कहा मैं छोटा चोर हूं, तुम बड़े चोर हो, ज्यादा अंतर नहीं है तुम में और मुझ में, तुम बड़े डाका डालते हो, मैं तो छोटा छोटा चोरी करता हूं, पर है तुम भी वही कर रहे हो जो मैं कर रहा हूं। सिकंदर भी कहां, किस लिए निकला, घर से निकल पड़ा, किस लिए, सारे विश्व को जीतने के लिए, लूटने के लिए, आतताई और अत्याचार से भरा हुआ उसका जीवन है, उसी को लोगों ने महान कहा है, और उसकी इच्छा भी कहां पूर्ण हो गई, मर गया जाते जाते। तो शांति की शक्ति, तो सेवा केंद्र में यदि चोर की प्रवेशता हो जाए रात को 12 बजे, तो सबसे पहले तो यहां इसमें योग की शक्ति बहुत चाहिए। मान लो आपको कोई डराने के ख्याल से आता है तो उस समय योग की शक्ति दो, उसको भी योग का बल देना, ये पहला काम करना। दूसरा काम क्या करना, शांति की शक्ति दो। तीसरा काम, बेपरवाह रहो। बेपरवाह अर्थात आप ऐसे रीति से रहो जैसे बेपरवाह है, हमको कोई परवाह नहीं है, जो करता है उसको साक्षी होकर अंदर शांति की शक्ति दे दो तो उसके हाथ ही नहीं चलेंगे, बस समझेंगे इसको तो कोई परवाह ही नहीं है। चोर को भाई बना दो, भाई बना दो, हाँ बस। तो बेपरवाह, बेपरवाह अर्थात, बेपरवाह अर्थात ये सब बाबा का है, रक्षक वो है, रक्षा वो दिया हुआ, हमने तो सरेंडर कर दिया है, वो देखेगा आप, हम हलचल में क्यों आए, हम वो जिम्मेवार है, वो सब कुछ उसका है, वो देखेगा हम इतना हलचल में क्यों आए। हाँ, तो जहां पॉजिटिव होगा वो तब दुख होगा, दर्द होगा, सब उसका था, उसका है, इसके लिए हम बेपरवाह। उस समय की बात है जब सामने कोई गन लेकर ही खड़ा है, दे दो सारा माल, ले और जाओ। अच्छा ही किया जो आ गए। और ये भी सोचना, बेचारा दुखी होगा ना, क्यों कर रहा है चोरी, चोरी चोरी, प्रैक्टिकली ये करना है, बेपरवाह अर्थात चुप ही रहना है, यहां पर वहां पर हलचल में नहीं आना है, हमारे पैसे, हमारा घर, हमारा शोकेस, हमारी अलमारी, हमारे पर्दे जो है ले लो। तो पर उसकी मानसिक अवस्था भी समझना है, बेचारा क्यों कोई चोरी करता है, कोई जन्म से चोर थोड़ी ना जन्म लेता है, जन्मजात चोर होता है क्या भाई, वो तो सीखा है ना चोरी, संस्कार धारण किया है उसने कहीं से, और उसकी कोई विवशता है इसलिए चोरी कर रहा है, उसको भी थोड़ा समझ लेना। तो ये होगी तीसरी बात। चौथा, नहीं तो डरते हैं, डर गए तो हलचल, या हलचल में आए तो वह और ही हलचल में आते हैं, तो डरना नहीं है, निर्भय है। चौथी चीज क्या है, फियरलेस, निर्भयता, चाहे चोर आ जाए, चाहे डाकू आ जाए, चाहे अचानक टेररिस्ट आ जाए, क्या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, ये सब चीजों में एक गुण जो चाहिए वो है निर्भयता। अचानक चीजें जो हो रही है, अचानक अचानक कोई बुरी खबर आ जाए, अचानक पता चल जाए कि हमारा कोई अपना गया, हलचल में नहीं आना है। हम देखते बहुत हलचल में आ जाते हैं कुछ कुछ ब्राह्मण आत्माएं, ये सब चीजों से बहुत बेचैनी, बहुत हलचल, और कुछ कुछ आत्मा एकदम स्थिर, एकदम शांत, एकदम स्टेबल, दोनों प्रकार की है। हाँ, अंदर से थोड़ी हो पर वो अंदर की हलचल बहुत ज्यादा होती है तब बाहर निकलती है। तो निर्भय, निर्भयता का अभ्यास के लिए क्या करना चाहिए, निर्भयता के अभ्यास के लिए बहुत सारी परिस्थितियों को पहले से ही रिवाइज करके रखना, देख लेना कि ये सब होगा। जैसे उस दिन अभ्यास बताए थे, शरीर के, शरीर जल रहा है, शरीर मर गया, शरीर को आग, शरीर बीमारी, शरीर मृत, शरीर पांच तत्वों में विलीन हो रहा है, शरीर ताल मिट्टी का पुतला है, शरीर तमोप्रधान पतित है, शरीर के अंदर क्या है, कीचड़ा भरा हुआ है, तो ये ऐसा गंदगी युक्त शरीर, इससे क्या लगाओ, इससे क्या मोह, ये शरीर खत्म हो गया और मुझे कोई डर नहीं, शरीर बूढ़ा, मेरा भी और दूसरे का भी, तो काहे से किससे मोह रखे, तो ये सारे देह से विराग। तो लास्ट बात बताई, भय भी उन्हों को हिम्मत दिलाता है, इसलिए भय में नहीं आना चाहिए, ऐसे टाइम पर साक्षी दृष्टा की स्थिति यूज करनी चाहिए। लास्ट है साक्षी दृष्टा, साक्षी दृष्टा अर्थात डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी दृष्टा अर्थात ये अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था है और इसका सबसे ज्यादा अभ्यास करना है। इधर स्तुति हो रही है, इधर निंदा हो रही है, साक्षी है। ना तो स्तुति से कोई लेना देना है, ना तो निंदा से कोई लेना देना है। इधर सपोर्ट कर रहे हैं लोग, इधर विरोध कर रहे हैं, साक्षी। इधर अच्छा अच्छा कह रहे हैं, इधर बुरा बुरा कह रहे हैं, साक्षी। इधर कुछ कह रहे हैं, इधर कुछ कह रहे हैं, कुछ ना कुछ होगा, साक्षी। साक्षी का है सबसे बड़ी साधना है ब्राह्मण जीवन की, साक्षी भाव की। भगवान अनअफेक्टेड है, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा गुण कौन सा है? साक्षी का सागर है वो, हमने देखा था, संपूर्ण साक्षी है वो। जरा भी उसको कोई भी चीज का फर्क नहीं पड़ता। तो साक्षी भाव का अभ्यास, योग को बढ़ाना, अपने अंदर की शांति को बढ़ाना। ओशनिक साइलेंस एक शब्द है इंग्लिश में, जिसको कहते हैं ओशनिक साइलेंस। ओशनिक अर्थात ओशन का, सिंधु का जो मौन है, कैसा अंदर से मौन होता है वो। ऊपर से खाली लहरें हैं, पर अंदर से ओशनिक साइलेंस, अतल सागर का जो मौन है वो मौन। इधर वो शांत, अंदर से, ऊपर से थोड़ा बहुत है, परंतु अंदर से गहरी शांतता। आज का है बाबा ने कथनी, करनी और रहनी, तीनों एक करो। उदाहरण दिया पंडित का, दूसरों को कहता था राम राम लेकर जाओ तो पार कर जाओगे, और अपनी बारी आई तो बोट कहां है, तब हम चलेंगे। तो केवल भाषण देने से नहीं होगा, अभ्यास भी करना। तो ये सारी बातें वैसी ही है, हम दूसरों को सिखाते भी है और खुद भी अभ्यास करें। जो दूसरों को सिखाते हैं, वो सिखाने के तुरंत बाद अपनी चेकिंग चालू कि जो सिखाया गया वो मैं खुद कर रहा हूं क्या। ये बताया कि दूसरों को ये करो ये करो ये करो, अभी ये उनके लिए था, अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ दूसरा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये इतनी बातें बताई परंतु मैंने की क्या, मैं साक्षी कितना रहा, बोलते बोलते साक्षी कितना रहा, सुनते सुनते साक्षी कितना रहा। हर बात में साक्षी की साधना, क्योंकि खेल हो रहा है विराट मंच पर, बहुत बड़ा मांडवा है जहां पर खेल चालू है, परंतु मैं सबसे भिन्न हूं। यह सबसे बड़ा अभ्यास है। यहां कुछ हो रहा है, यहां कुछ कर रहे हैं, कुछ आत्माएं कुछ कर रही है, कुछ कर रही है, परंतु मैं संपूर्ण साक्षी हूं। तो साक्षी का अभ्यास। तो चोरी, डकैती, टेररिस्ट अटैक, प्राकृतिक आपदाएं, और क्या क्या हलचल हो सकती है सेंटर पर, भालू अटैक, जानवरों के द्वारा आने वाले पेपर, मारा मारी तो होगी। आज की मुरली में लास्ट लाइन है अच्छा से पहले, वो जो राज्य था वहां पे सुख शांति और समृद्धि है, अथाह समृद्धि, और यहां तो मारा मारी लगी पड़ी है, चटा भेटी है ये गिरने और संभलने की, टग ऑफ वॉर, गिरना और संभलना है, हमें उन राहों पर चलना है, गीत कहा है आज। तो ये सब होगा हलचल, पर ये सारी हलचलों के बीच मैं अचल सिंधु, इन सारी हलचलों के बीच मैं अचल घर। चंचल घर नहीं बन जाना अशोक भाई, बाबा ने कहा चंचल घर नहीं बनना है, तुम्हारा यादगार चंचल घर है अचल घर है, अशोक वाटिका है या अशोक वाटिका है। तो अडोल ये तो स्थूल चोर है, कुछ तो अलग प्रकार के चोर होते हैं, अलग प्रकार के चोर होते हैं, कोई रॉयल चोर होते हैं, कोई सूक्ष्म चोर होते हैं, वो चोर अलग, ये चोर अलग। वो होते हैं ना जिसको क्या कहते हैं, दुकानों में जाते चीजें उठा लेते चुपचाप और रख देते, लिफ्ट क्या कहते हैं उसको, क्लेप्टोमेनिया, एक बीमारी है क्लेप्टोमेनिया जिसको कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को चोरी करने की आदत होती है, पर उसका उद्देश्य, उसकी मंशा खराब नहीं होती है, उसकी आदत है, वो बीमार होता है, उसको खुद ही पता होता है मैं पीड़ित हूं, कोई भी चीज देखी कि ली और डाल दी अंदर, बाकी उसका उद्देश्य नहीं, किसी के चरणों के झुके उसका जूता ही ले लिया और चल गए, और वो परेशान है, और वो उसका गुरु भी हो सकता है, उसका कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि चोरी करना, पर वो बीमारी है वो क्लेप्टोमेनिया। उसकी मतलब वो पीड़ित खुद भी पीड़ित है, जिस भी घर में जाएगा टूथब्रश साबुन चार्जर डाल दिया, बाकी उसको उसका कुछ करना कुछ नहीं है, पर वो आदत बन गई है क्लेप्टोमेनिया। हाँ तो वो तो एक बीमारी है, संस्कार है। और कुछ कुछ है लख कख का चोर, सो लख का चोर, छोटी छोटी चोरी भी बड़ी चोरी जैसी है। तो कोई वस्तु उठा लेना खाने की, मुरलियों में बहुत बार आता है, बिना पूछे उठाकर खा लेते हैं। दूसरा होता है एक चोरी है, किसी का मोबाइल ले लेना और उसमें देखना, किसी की बैग पर्स रखी है, कोई चीज हमको नहीं मिल रही है, पर्स रखी हुई, हमने सोचा चलो इसको देख ले, पर वो पर्स हमारी नहीं है, किसी और की है। दूसरे की वस्तुओं को बिना पूछे हाथ लगाना, पर्स मोबाइल ईमेल्स व्हाट्सएप मैसेजेस कॉल्स कॉल हिस्ट्री गूगल गूगल हिस्ट्री कुछ भी, ये भी चोरी है। कोई भी चीज रखी है यहां पर, अब कोई है नहीं और हमको पता नहीं किसकी है और हमने ले ली और रख दी अपनी समझकर। उस दिन हम शांतिवन गए थे तो वो जो बाबा का कमरा है प्रकाश स्तंभ के आगे, तो एक बूढ़ा व्यक्ति था वो भाई, वहां से निकला उसकी चप्पल गुम हो गई, तो वो मुझे कहने लगा मेरी चप्पल चली गई, मैं ये चप्पल ले लूं जो सामने रखी है। ये आपकी है क्या? नहीं मेरी तो चली गई, ये किसी और की है, तो मैं क्या करूं अब, ले लूं क्या, ऐसे प्रश्न पूछा उसने। ये भी चोरी है, डॉक्यूमेंट्स। हाँ तो और दूसरी बात, ये चोरी अगर हो जाती है उसके बाद की भी बड़ी प्रोसीजर है फिर पुलिस और वो सारी चीजें, उसमें भी डरना नहीं है, ये सब रूटीन प्रोसीजर जो है वो करना है, नहीं तो इससे दूसरी आफतें आ जाएगी। तो सबसे पहले तो सजगता सावधानी, योग के प्रयोग योग के एक्सपेरिमेंट। और दूसरी एक बात, ये सब हो गई चोरी, उसके बाद में भी पोस्ट थेफ्ट योगा, पोस्ट थेफ्ट योगा कि वो वस्तु आ जाएगी, उसको सकाश देना, वो आ जाएगा लेकर ही आ जाएगा दूसरे दिन रिटर्न करने, चीजें जहां थी वहीं आ जाएगी, ऐसी पावरफुल सकाश देना उसको कि वो उसको लगे भाई ये क्या कर दिया मैंने, ये तो मेरे काम की चीज नहीं है, ये तो वहीं रख दूं जहां थी, और चुपचाप आके रख के छोड़ के चला जाएगा और दूसरे दिन चुपचाप कोर्स करने भी आ जाएगा वो, बिना ये बताया कि मैं ही वो चोर था। स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक उदाहरण है, वो एक गांव में जाते हैं तो वहां पे एक ना एक पहाड़ी पर जाते हैं तो वहां पर उनको एक साधु मिलता है, उस साधु को देखकर वो बहुत प्रभावित होते हैं और वो साधु उनको एक कहानी सुनाता है। वो साधु कहता है, जवान होता है, वो कहता है कि एक जो पावहारी बाबा थे केवल हवा खाने वाले, उसका वर्णन आता है बहुत जगह, तो उनकी कहानी सुनाता है। एक बार एक पावहारी बाबा थे, नहीं विवेकानंद सुनाते हैं उसको कि पावहारी बाबा जो थे वो यहां रहते थे, मैं उनसे मिलने गया था तो उन्होंने एक बात, उनके भविष्य में प्रसिद्ध है, एक बार एक चोर उनके घर में आ गया और उनकी कुछ सामान थे रोटी वगैरह कुछ वो लेके भागने लगा, तो ये पावहारी बाबा उसके पीछे भागने लगते, अरे मैं घी तो लगा के जाओ, तो ऐसे करके वो चोर भागने लगता है तो वो उसके पीछे भागते है। तो वो कहते हैं हाँ ये कहानी तो मुझे पता है पर मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं। वो साधु कहता है विवेकानंद को, वो जो चोर था ना मैं हूं। वो जो चोर भागा था वो मैं हूं। तो रूपांतरित हो गया, परिवर्तन हो गया। तो चाहे चोर हो या कोई भी, दिल तो सब में है, रूपांतरित होंगे। योग का बल, योग का प्रयोग, परमात्मा प्रेम की शक्ति, वाइब्रेशंस अपनी कमाल दिखाएगा और वो आत्माएं परिवर्तन होगी। तो ये सारी बातें थी चोरी की। ओम शांति।